नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश मंत्रिमंडल के बीच विभागों का हुआ बंटवारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय के अलावा ऐसे सभी विभाग होंगे जो किसी को आवंटित नहीं है। भाजपा को पहली बार गृह मंत्रालय मिला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सुनील कुमार को शिक्षा विभाग दिया गया। लोजपा रामविलास कोटे से संजय सिंह को पीएचईडी और संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई। और हम के संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों के बीच आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय के अलावा ऐसे सभी विभाग होंगे जो किसी को आवंटित नहीं है। भाजपा को पहली बार गृह विभाग मिला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खान और भूतत्व विभाग मिला है। इसके साथ ही मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। वहीं नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रामकृपाल यादव को कृषि विभाग सौंपा गया है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, श्रीमती रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, श्री लखेंद्र पासवान को SC ST कल्याण विभाग, संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन, अरुण शंकर प्रसाद को कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग और प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता विभाग के साथ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। पहली बार मंत्री बनी राष्ट्रीय शूटर शेषी सिंह को खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इधर जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बिजेंद्र यादव को वित्त विभाग सौंपा गया है। बिजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग भी देखेंगे। वहीं श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग, लेशी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग और जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कोटे से संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को फिर से लघु जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य की एनडीए सरकार बिहार के विकास के संकल्प के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिहार के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष ईमानदारी से चुनाव में हार स्वीकार करने के बजाय वोट चोरी और SIR पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। श्री पासवान ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी भी हार से गुजरी है, लेकिन हम लोगों ने विनम्रता से हार को स्वीकार किया है।
RJD और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार, हम लोग गुजरे हैं ना। पर आज 2024 और 2025 में हम लोगों ने पुनः अपने आप को स्थापित करने का काम किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ईमानदार मंथन किया। इतने अहंकार में डूबी हुई ये पार्टियां हैं, कांग्रेस हो राजद हो, कि सिर्फ ठीकरा फोड़ने पे।
भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार के लोगों ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। श्री हुसैन ने आज दिल्ली में कहा कि हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि नई सरकार में बहुत संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें अनुभवी और युवा जोश वाले नेता भी शामिल हैं।
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। जबरदस्त उत्साह है। हम लोगों के ऊपर इस बात का जिम्मेदारी है कि हम लोग, बिहार की जनता ने जिन उम्मीदों से हमें 200 से ज्यादा सीटें दी हैं, उनके उम्मीद पे खड़ा उतरना है। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है, जहां इसमें बहुत एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, उनकी टीम में 20-20 साल का एक्सपीरियंस लिए मंत्री भी हैं और बहुत युवा भी हैं।
जदयू के वरिष्ठ नेता और भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जनता के पूर्ण विश्वास के कारण नीतीश सरकार को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम किया है।
मुकम्मल भरोसा नहीं हो तब तक ऐसी बड़ी जीत नहीं होती, ये उसी का प्रतीक है। और पिछले 20 वर्षों से लगातार जो उनका काम हुआ है, जनता का भरोसा भी उसी प्रकार बढ़ता गया है। इनके काम देख के जनता आश्वस्त रहती है कि इनके हाथों में जब तक बिहार की बागडोर है तब तक बिहार सुरक्षित है, तेज गति से तरक्की करेगा और सभी लोग खुशहाली के रास्ते अग्रसर होंगे।
जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री ठाकुर ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री बिहार का लगातार विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार में शिक्षा, रोजगार, अपराध और पलायन की स्थिति में बदलाव हुआ है। श्री ठाकुर ने कहा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद मुख्यमंत्री के साथ है।
10वीं बार उन्होंने वोट लिया 20 वर्ष और उसके पहले नीतीश कुमार जी 1985 से विधायक रहे हैं, उसके बाद 5 बार सांसद रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं। उन्होंने जो विकास के लिए किया 20 वर्षों से जो बिहार का विकास कर रहे हैं, तो उसके लिए बिहार की जनता ने उनको पुनः बिहार की गद्दी पर बैठने का आशीर्वाद दिया है। हम पूरे बिहार वासियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार की राजनीति को परिवारवाद में समेटने का काम सबसे पहले राजद ने ही किया है।
लालू जी की पार्टी परिवारवाद पर कोई चर्चा करे, शर्मसार होगा बिहार की जनता और सब लोग। उनसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है परिवारवाद का? बिहार की राजनीति को परिवारवाद में समेटने का काम सबसे पहले हिंदुस्तान में कोई किया है तो लालू जी ही किए, क्या बोलेंगे।
विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में हंगामा जारी है। टिकट वितरण से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने के कारण पार्टी को भारी नुकसान हुआ। इधर बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेषित पत्र में फातिमा ने पार्टी नेतृत्व और बिहार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव में टिकट बंटवारे में महिलाओं को नजरअंदाज करने और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नए श्रम संहिताओं को आज से लागू करने की घोषणा की है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नए श्रम संहिता देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं है बल्कि देश के प्रत्येक श्रमिक के लिए सरकार की ओर से गरिमा की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये संहिताएं विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम तथा समय पर वेतन भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और लोगों के लिए लाभदायक अवसर के एक मजबूत आधार के रूप में काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम भविष्य के लिए तैयार एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में भी सहायक होगा। श्री मोदी ने इस निर्णय को स्वाधीनता के साथ अत्यधिक व्यापक और प्रगतिशील तथा श्रम केंद्रित सुधारों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि ये सुधार देश के श्रमिकों को सशक्त बनाएंगे और व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से पिछले 11 वर्षों में नागरिकों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना पिछले दशक की सबसे प्रभावशाली पहलों में से एक बनकर उभरी है। वर्तमान में देश भर में लगभग 17,000 जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक इस संख्या को 20,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। परियोजना के उत्पादों में अब 2,000 से ज्यादा दवाइयां और 315 सर्जिकल उत्पाद शामिल है, जिनमें एंटीबायोटिक्स, हृदय संबंधी दवाएं, मधुमेह रोधी दवाएं, दर्द निवारक और पोषण संबंधी पूरक जैसी 29 चिकित्सकीय श्रेणियां शामिल हैं। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1996 में एक प्रस्ताव के जरिए 21 नवंबर को इसके मनाए जाने की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
टेलीविजन की बात की जाए तो भारत में सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपने कई कार्यक्रमों और धारावाहिकों के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया है। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने तो टेलीविजन को घर घर तक पहुँचा दिया। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपने कई कार्यक्रमों और धारावाहिकों के माध्यम से जनता के बीच खासी लोकप्रियता हासिल की। इन धारावाहिकों में मालगुड़ी डेज, बुनियाद, हम लोग जैसे प्रमुख धारावाहिक शामिल हैं। भारत में टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो ने की थी। बाद में 1965 में इसका नियमित प्रसारण शुरू हुआ और दूरदर्शन की शुरुआत हुई। भारत में टेलीविजन नेटवर्क की पहुँच 30 करोड़ घरों में 90 करोड़ दर्शकों तक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में विश्व टेलीविजन दिवस समूचे देश में मनाया जाता है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के 56वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। एक रिपोर्ट।
इफ्फी 2025 के दूसरे दिन दो विशेष उद्घाटन हुए, इंडियन पैनोरमा और मास्टर क्लास। इंडियन पैनोरमा प्रतिष्ठित भारतीय फिल्मों की विशेष प्रदर्शनी है। यह इस फिल्म महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण है। कमलेश मिश्रा की फिल्म काकोरी ने नॉन फीचर फिल्म श्रेणी का शुभारंभ किया, जबकि राजकुमार पेरियासामी निर्मित तमिल फिल्म अमरन पहली फीचर फिल्म रही। निर्देशक मुजफ्फर अली की 1978 की फिल्म गमन भी आज दिखाई गई। इस फिल्म ने 1978 में इफ्फी में सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जीता था। प्रदर्शनी के बाद फिल्मकार शाद अली से बातचीत में दोनों ने अपने सिनेमा यात्रा और अपने काम के बारे में दर्शकों तथा फिल्म प्रेमियों के साथ मनोरंजक किस्से साझा किए। इफ्फी 2025 का दूसरा दिन भी उत्साह और रोमांच के साथ भरा हुआ जा रहा है और सिनेमा के जबरदस्त जादू के साथ रफ्तार बनाए हुए है। सायरा मुस्तफा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आकार देने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में विश्व स्तरीय स्टूडियो और बढ़ती VFX तकनीक के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो और फिल्म निर्माताओं की सभी फिल्म निर्माण आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
हम तकनीक और कौशल आधारित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व के बेहतरीन स्टूडियो में शामिल भारत के स्टूडियो एनिमेशन क्षेत्र में बढ़ते VFX और विस्तारित वर्चुअल प्रोडक्शन क्षमताएं डिजिटल सामग्री के विकास के अवसर प्रदान करती है।
दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने विभिन्न विषयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 25 छात्राओं को सम्मानित किया। सारण के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में शामिल होने पर डोरीगंज थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कटिहार जिला पुलिस एवं एसटीएफ की टीम ने कटिहार शहर के कुख्यात अपराधी और 25,000 के इनामी सनी श्रीवास्तव समेत एक अन्य अपराधी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जयचंद रेलवे गुमटी के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश मंत्रिमंडल के बीच विभागों का हुआ बंटवारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन और मंत्रिमंडल सचिवालय के अलावा ऐसे सभी विभाग होंगे जो किसी को आवंटित नहीं। भाजपा को पहली बार गृह मंत्रालय मिला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और सुनील कुमार को शिक्षा विभाग दिया गया। लोजपा रामविलास कोटे से संजय सिंह को PhD और संजय पासवान को गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई। और हम के संतोष सुमन को लघु जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।